दूसरा इतिहास अध्याय 34, अध्याय 34 पद 1। जब योशिया राज्य करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। योशिया ने धर्म सुधार का कार्य किया। अध्याय 34 पद 3। वो लड़का ही था अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष भी न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वो ऊंचे स्थानों और अशेरा नाम मूर्तों को खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। उसके राज्य के 8 वर्ष बाद जब वो 18 वर्ष का हुआ उसने परमेश्वर की खोज आरंभ की। जब वो 21 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर का वचन यरमिया के पास पहुंचा। अभी आप यरमिया के काल में हैं क्योंकि योशिया के 13वें वर्ष में परमेश्वर का वचन यरमिया नबी के पास पहुंचा। यरमिया उस समय 17 वर्ष के करीब था जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। इसका अर्थ है यरमिया और योशिया की आयु में करीब 4 वर्ष का फर्क था। योशिया लोगों के बीच आत्मिक सुधार लाया तो भी यरमिया नबी ने देश में पाया कि आत्मिक सुधार केवल बाहरी दिखलावा था। ये केवल इसलिए था कि राजा परमेश्वर की सेवा तो कर रहा था परंतु संपूर्ण हृदय से नहीं। यरमिया ने उनके बाहरी वार्तालाप और परमेश्वर की आराधना के प्रति उन्हें साक्षित किया और उन पर यह प्रकट किया कि वे केवल बाहरी रूप से फिरे हैं हृदय से नहीं। यदि आप यरमिया की पुस्तक के अध्ययन में इस समय के इतिहास को याद रखें तब आप यरमिया की भविष्यवाणियों को भली भांति समझ सकेंगे क्योंकि यही वो समय था यरमिया ने अपनी भविष्यवाणी को आरंभ किया। योशिया द्वारा यरूशलेम का धार्मिक शोधन और मंदिर की आराधना का पुनरुद्धार आदि। यरमिया ने बाबुल की बंदवाई तक भविष्यवाणी की सेवा दी। अध्याय 34 पद 4 से लेकर 7 तक। और बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उनके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली और अशेरा नाम और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उनकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर चित्रा दी जो उनकी बलि चढ़ाते थे और पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनशे एप्रेम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियों को पीसकर बुकनी पर डाला और इसराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। उसके राज्य के 18वें वर्ष में देश का शोधन करने के बाद उन्होंने मंदिर की मरम्मत की। इस समय यरमिया को भविष्यवाणी करते हुए 5 वर्ष हो गए थे। उन्होंने मंदिर की मरम्मत की आज्ञा निकाली। उन्होंने मजदूरों को किराए पर लिया जिन्होंने आकर भवन का पुनर्निर्माण किया जो उसके पिता आमोन और उसके दादा मनशे के समय से वीरान पड़ा था। जब वे मंदिर की सफाई कर रहे थे तब उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक मिली जो परमेश्वर की व्यवस्था थी। उस पुस्तक को याजक योशिया के पास लेकर आया और उस पुस्तक से पढ़कर सुनाने लगा और पढ़ते वो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में आया जहां परमेश्वर के शाप लिखे हैं जो लोगों के परमेश्वर को त्यागने के कारण उनके ऊपर आने वाले थे। योशिया चिल्लाया और बोला, ओह ये तो भयानक है। उसे महसूस हुआ कि उन लोगों के अपराधों और पापों के कारण जो परमेश्वर के विशेष लोग कहलाते हैं परमेश्वर ने उन्हें कहा कि वो उन्हें शाप देगा। जब उन्होंने योशिया को ये सूची पढ़कर सुनाई तब उसने वचन सुनकर अपने कपड़े फाड़े और कहा। अध्याय 34 पद 21 और 22 कि तुम जाकर मेरी ओर से इसराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जल जलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के और दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वो तो उस शालूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वो स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने कहा, हाँ, देश का पतन हो जाएगा, परंतु ऐसा योशिया के शासन काल में नहीं होगा, जो उसकी धार्मिकता और परमेश्वर की ओर फिरने के कारण है। इसलिए उसके साथ प्रतिज्ञा की गई कि वो शांति से मृत्यु को प्राप्त करेगा। उसने प्रभु की व्यवस्था लोगों को पढ़कर सुनाई। उसने उनके सुनते ही इस व्यवस्था की पुस्तक अर्थात परमेश्वर की वाचा को पढ़कर सुनाया, जो यहोवा के भवन में पाई गई थी। अध्याय 34 पद 31। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़ा होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने पूर्ण मन और पूर्ण जीव से उसकी आज्ञाएं, चेतौनियां और विधियों का पालन करूंगा, और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और योशिय्याह ने इसराइलियों के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इसराइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई, और उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना ना छोड़ा। उसने एक अद्भुत फसा का पर्व मनाया, जो उसके दादा हिजकिया से भी बड़ा फसा का पर्व था। वास्तव में इस तरह का फसा का पर्व पूरे देश में शमूएल के समय से आज तक नहीं हुआ था। हिजकिया ने बड़ा फसा मनाया था, जो सुलेमान से भी बड़ा था।